जीवन के लिए सत्य, जनवरी 19। कोई दूसरा नाम है ही नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। शिकागो के बाहरी इलाके में स्थित नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के परिसर के पास बहाई धर्म द्वारा निर्मित एक विशाल मंदिर है। वह एक भव्य भवन है जिसमें 9 बरामदे हैं, जो 9 प्रमुख विश्व के धर्मों में से प्रत्येक के लिए है। ये सभी बरामदे एक मुख्य सभागार की ओर ले जाते हैं। इसकी वास्तुकला का उद्देश्य सत्य तक पहुंचने के कई मार्गों को दर्शाना है, क्योंकि बहाई लोगों का मानना है कि सत्य को किसी एक मत में, किसी व्यक्ति में या इकाई में नहीं पाया जा सकता। यह मानसिकता उस सांस्कृतिक परिवेश से बहुत अलग नहीं है जिसमें प्रेरित पौलुस रहता था। रोमी समाज बहुत खुले विचारों वाला, कई तरीकों से सोचने के लिए बहुत इच्छुक और सभी प्रकार के धर्मों को अपनाने के लिए तैयार था। सच में रोम में अपने देवालयों में मूर्तियों और देवी देवताओं का एक विशाल संग्रह रखा हुआ था, और यह मान्यता रखता था कि सत्य तक पहुंचने के एक से अधिक मार्ग हैं। तो फिर ऐसी बहुवादी, खुले विचारों वाली, बहु ईश्वरवादी संस्कृति मसीहियों को कोलोसियम, जो कि रोमी काल का एक बड़ा कलागृह था, में शेरों के सामने भोजन के तौर पर कैसे परोस सकती थी? सम्राट नीरो ने विश्वासियों पर लक्ष्य क्यों साधा, और यहाँ तक कि अपने समारोहों में प्रकाश के लिए उनके शरीरों को मानव मशालों के रूप में उपयोग क्यों किया? इसका उत्तर एक साधारण तथ्य में निहित है कि रोमी संस्कृति मसीहियत को न तो सहन कर सकती थी और न ही सहन करती थी, क्योंकि मसीही लोग मसीह को मनगढ़ंत देवी देवताओं में सम्मिलित करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत वे इस सत्य पर अटल रहे कि यीशु के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम में उद्धार नहीं है, जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने भी उसी यहूदी महासभा से साहसपूर्वक यह कहा था जिसने प्रभु यीशु को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। पहली सदी की रोमी संस्कृति में जैसे ही लोग इस विश्वास को स्वीकार करते थे, वैसे ही उनका तिरस्कार किया जाता, उनका ठट्ठा उड़ाया जाता और कभी कभी तो उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। जो लोग बहुदेववाद के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देते हैं कि सभी मार्ग समान रूप से मान्य हैं, उनको वह सह नहीं सकता। वास्तव में वह प्राय उन लोगों के प्रति निर्दयतापूर्वक अत्याचारी हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि लगभग 2000 साल बाद भी हम एक ऐसे परिवेश में जी रहे हैं जो रोमी साम्राज्य से ज़्यादा अलग नहीं है। यद्यपि इतना तो है कि इसके सताव के तरीके कम क्रूर हैं। बाइबल पर आधारित मसीहियत, जिसका मसीह महिमा में लौटेगा, और अचूक बाइबल और त्रिएक परमेश्वरत्व एक बहुदेववादी संसार के लिए घिनौनी बातें हैं। हमारे आसपास का संसार भले ही जो भी मानता हो, यीशु ऐसा नहीं है जिसे अन्य झूठे देवी देवताओं या धार्मिक मूर्तियों के बगल में कोई स्थान दिया जाए। वह सत्य की ओर ले जाने वाले एक और बरामदे से कहीं बढ़कर है। जैसे पलिश्ती देवता दागोन यहोवा के संदूक के सामने गिरकर टूट गया था, 1 शमूएल की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 4, वैसे ही बाकी सब भी उसके सामने व्यर्थ ठहरेंगे। इस तरह का संदेश लोकप्रिय नहीं है, किंतु यह सच है और अद्भुत है, क्योंकि यदि कोई क्रूस पर चढ़ाया गया उद्धारकर्ता नहीं होता तो अनंत जीवन का कोई मार्ग ही नहीं होता, क्योंकि बाकी सभी रास्ते तो केवल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। एक दिन बुद्ध, मोहम्मद और प्रत्येक झूठा नबी परमेश्वर पिता की महिमा के निमित्त यीशु के चरणों में झुकेगा और यह घोषणा करेगा कि वह प्रभु है। जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक सत्य को थामे रहिए और लोगों को उस एक अनोखे व्यक्ति के बारे में बताने का प्रयास करते रहिए, जो वह मार्ग, वह सत्य और वह जीवन है जिसकी हम सबको आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6। वे सब मसीही ही थे जिन्होंने यूहन्ना और पत्रस के हार मानने या चुप रहने से इनकार कर देने के उदाहरण का अनुसरण किया, जिसके कारण रोमी समाज बदल गया। परमेश्वर के अनुग्रह से हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज संसार को बदल सकते हैं।